पेज 53, लेसन नंबर 8, रेगिस्तान। विश्व में ऐसे अनेक विशाल क्षेत्र हैं जो बहुत गर्म हैं और जहां ना के बराबर वर्षा होती है, इसलिए वहां बहुत कम पौधे उगते हैं। ऐसे क्षेत्रों को रेगिस्तान या मरुस्थल कहा जाता है। रेगिस्तान ऐसा क्षेत्र है जहां साल भर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। वनों और घास के मैदानों के विपरीत रेगिस्तान पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पृथ्वी का पांचवां भाग रेगिस्तान है। जिस कटिबंध में रेगिस्तान पाए जाते हैं उसके अनुसार गर्म, ठंडे और बर्फीले रेगिस्तान कहलाए जाते हैं। अब गर्म रेगिस्तान का उष्ण मरुस्थल। उष्ण कटिबंध में रेगिस्तान रेतीले होते हैं। वे साल भर गर्म और खुश्क रहते हैं। जल कुछ ही इलाकों में उपलब्ध होता है, जिसे मरुधान या ओएसिस कहा जाता है। इनमें उत्तर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान है, जो विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल भारत से दुगना है। अब ठंडा रेगिस्तान या शीतोष्ण मरुस्थल। ये रेगिस्तान शीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। ग्रीष्म काल में वे शुष्क और ठंडे तथा शीत काल में ठंडे होते हैं, जब उन पर बर्फीली हवाएं चलती है। यहाँ की सूखी और ढीली मिट्टी में केवल छोटे झाड़, झंखाड़ और शुष्क घासें उग सकती हैं। शीत काल में ठंडे तापमान के कारण सतह का पानी जम जाता है। ये रेगिस्तान भारत में लद्दाख, मध्य एशिया में गोबी मरुस्थल और दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया में पाए जाते हैं। अब बर्फीला रेगिस्तान। शीत कटिबंध में एंटार्क्टिका और आर्कटिक प्रदेश में बर्फ की विशाल चादरें असल में हिम आबद्ध मरुस्थल हैं। शीत काल में एंटार्क्टिका में तापमान -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ग्रीष्म काल में यह लगभग 0 डिग्री होता है। ताप और जल की कमी के कारण वनस्पति का अभाव है। पेज 54। मजे की बात, पृथ्वी पर 10 मुख्य रेगिस्तान हैं। गर्म रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में सहारा, पश्चिम अफ्रीका में नामिब या कालाहारी, सऊदी अरब में अरब, ईरान में ईरानी, दक्षिण अमेरिका के चिली में अटाकामा और मध्य ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है। एशिया में शीत मरुस्थल मंगोलिया में गोबी और तुर्किस्तान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में है। मौत की घाटी मरुस्थल उत्तर अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेगिस्तान के प्राणियों ने जल और भोजन की कमी और अत्यधिक तापमान वाली कठिन परिस्थितियों में अपने को ढाल लिया है। अनेक प्राणी दिन में गर्मी से बचने के लिए बिल खोदकर या छांव में छिप जाते हैं और रात में निकलते हैं। अनेक जानवरों को पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे पानी अपने भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। अब पेज 55, थार से सहारा के गर्म रेगिस्तान तक। रेगिस्तान सुनीता के लिए घर की तरह है। वह जैसलमेर में रहती है, जो राजस्थान के थार रेगिस्तान के टीले सामधानी से केवल 42 किलोमीटर दूर है। उसके पिता पर्यटक गाइड हैं और वे कभी कभी सुनीता को ऊंट के कारवान पर अपने साथ ले जाते हैं, विशेष रूप से जब पर्यटकों में बच्चे हों। सुनीता को झूलते हुए ऊंट पर यात्रा करना बहुत पसंद है। उसने रेगिस्तान में रहने वाले रबाड़ी परिवार से दोस्ती भी कर ली है। वे रबाड़ी ऊंट पालक हैं। जैसलमेर के ऊंट अपनी गति के लिए प्रसिद्ध हैं और वे एक रात में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते हैं। एक सप्ताह पूर्व जब सुनीता के पिता मिश्र से आए, पर्यटकों को रेगिस्तान की यात्रा पर ले गए, तो वह भी उनके साथ गई। उनमें ताहिरा नामक एक 15 वर्षीय लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रही थी। जिस क्षण ताहिरा ने सुनीता को देखा, दोनों की दोस्ती हो गई। रात जब वे जैसलमेर लौटे, ताहिरा ने सुनीता को उत्तर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बारे में बताया, जहां वह 2 साल पहले गई थी। ताहिरा ने कहा कि सहारा रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह है। वहां तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। पेज 56। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये अफ्रीका के 10 देशों में फैला हुआ है। क्या तुम जानती हो कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका जितना बड़ा है? केवल एक रेत का टीला फ्रांस जितना बड़ा है, ताहिरा ने कहा। सुनीता ने अचरज से ताहिरा को देखा। उसका प्रिय थार उसको सबसे बड़ा लगता था। रेत के टीले सहारा के केवल कुछ भाग में है, लेकिन रेगिस्तान इतना बड़ा है कि कोई एक टीला भी विशाल हो सकता है। ज्यादातर सहारा चट्टानी मैदानों से बना है, जिनमें पत्थर और बजरी भरे पेड़ हैं। शेष स्थानों में चूने के पठार या पर्वतमालाएं हैं। सहारा में एक साल में 7.6 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां भी यह हो सकता है कि एक सप्ताह में 2 बार बारिश आए और फिर सालों साल एक बूंद भी न पड़े। रेत और चट्टान के बीच मरुधान होते हैं, जहां खजूर और बबूल के पेड़ फलते फूलते हैं। मरुधान रेगिस्तान के उस क्षेत्र को कहते हैं जहां साल भर पानी रहता है। अक्सर ये पानी जमीन के नीचे जल धाराओं से मिलता है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग मरुधानों के आसपास रहते हैं। मरुधानों की वजह से ही लोग रेगिस्तान को पार कर सकते हैं। ताहिरा ने सुनीता को बताया, थार के रबाड़ियों की तरह सहारा में भी लोग रहते हैं। इन खानाबदोश लोगों को टुआरेगा कहा जाता है। उनमें से कुछ लोगों के पास जमीन और ऊंट है, अन्य टुआरेगे उनकी जमीन पर खेती का काम करते हैं और पशु चराते हैं। टुआरेग बहुत निपुण लोहार होते हैं। वे ऊंट का साज सामान, गहने, हथियार और घरेलू उपयोग की अधिकतर वस्तुओं सहित रेगिस्तान में रहने के लिए जरूरी हर एक चीज का निर्माण करते हैं। ये जो मैंने गले का हार पहना है, मुझे एक टुआरेग लड़की ने दिया था, ताहिरा ने कहा। सहारा में इतनी ज्यादा रेत है कि रेगिस्तानी हवाएं उसको नई नई जगहों में बिखेरती रहती है। इसलिए सहारा का स्थान हमेशा ही धीरे धीरे खिसकता रहा है। ताहिरा ने सुनीता को उन खूनखार रेगिस्तानी तूफानों के बारे में बताया जो 2 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची रेत की दीवारें बना सकती है। उसके माता पिता ने ताहिरा को इन रेतीले तूफानों द्वारा कारवाओं, मरुधानों, यात्रियों और यहां तक कि पूरी सेनाओं के दफन होने की कहानियां सुनाई थी। जब लोग रेतीली आंधी में फंस जाते हैं, वे ऊंट के पीछे छिप जाते हैं। इससे उन्हें उड़ती हुई रेत से आश्रय मिल जाता है। क्या तुम्हें पता है किसारा में रहने वाले लोगों ने रेगिस्तान की हवाओं को अलग अलग नाम दिए हैं। पेज 58। सुनीता ने ताहिरा को थार रेगिस्तान में पाए जाने वाली सोहन चिड़िया की एक तस्वीर दिखाई थी। उसने ताहिरा से पूछा, सहारा में कौन से जानवर पाए जाते हैं? जवाब में बोली, सहारा में सभी प्रकार के जानवर रहते हैं। ताहिरा ने बोला, यहाँ एक कुबड़ वाला ड्रोमेडरी ऊंट रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है। ये वही ऊंट है जो तुम अपने थार में देखती हो, ताहिरा ने कहा। उसने सुनीता को बताया कि इसके अलावा हिरण, बारासिंघा, रेगिस्तानी लोमड़ी, नेवला, जहरीला वाइपर सांप, बिच्छू और नुकीली पूंछ वाली छिपकली भी सहारा में रहते हैं। मजे की बात सुनिए, दो तरह के ऊंट, विश्व में दो तरह के ऊंट पाए जाते हैं। अरबी या ड्रोमेडरी ऊंट का एक ही कुबड़ होता है। बैक्टेरियन ऊंट के दो कुबड़ होते हैं। वह केवल मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में पाया जाता है। सर्दियों में बैक्टेरियन ऊंट के तन पर घने बाल उग आते हैं जो उसे बर्फीली हवाओं से बचाते हैं। गर्मी में ऊंट के बाल झड़ जाते हैं। पेज 59। अभ्यास। इन सवालों के जवाब दो। नंबर 1, रेगिस्तान या मरुस्थल किसे कहते हैं? वह किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? 2, दुनिया में कितने प्रकार के रेगिस्तान हैं? 3, मरुधान किसे कहते हैं? 4, सहारा में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? वे रेगिस्तान के वातावरण में अपने को कैसे ढालते हैं? 5, सहारा में कौन से लोग रहते हैं? विश्व के नक्शे में सहारा व थार रेगिस्तान अंकित करो। अब पेज 60। शीतोष्ण रेगिस्तान, मंगोलिया के गोबी का अनोखा सफर। जम्मू और कश्मीर के लद्दाख जिले के प्रमुख शहर लेह में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय था। सोनम और उसके भाई ने अपने दादाजी से कहानी सुनाने को कहा। दादाजी के चेहरे पर झुरियां ही झुरियां थी, पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं तुम्हें काल नामक एक रूसी पर्यटक के बारे में बताता हूं, दादाजी ने कहा। वह करीब 30 साल पहले मेरे साथ रहा था। उसे रेगिस्तान से बहुत लगाव था। उसने पहले रूस की राजधानी मॉस्को से अत्यंत ठंडे साइबेरिया के रेगिस्तान की यात्रा की थी। उसके बाद उसे मंगोलिया का विशाल गोबी रेगिस्तान देखने का मन किया। काल ने ट्रांस गोलियन एक्सप्रेस रेलगाड़ी पर यात्रा की जो रूस और चीन को जोड़ती है और मंगोलिया के विशाल रेगिस्तान से गुजरती है, दादाजी ने बताया। पेज 61। सोनम ने अपने दादाजी से पूछा कि काल को लद्दाख का बंजर भूदृश्य कैसे लगा था? उन्होंने कहा, काल को लद्दाख का विशाल पथरीला भू दृश्य पसंद आया, परंतु वह गोबी रेगिस्तान की विशाल सुंदरता का वर्णन करने से अपने को रोक न सका। काल ने मुझे बताया कि प्राचीन मंगोलियाई भाषा में गोबी का अर्थ एक जल रहित स्थान है। लोगों ने संपूर्ण गोबी को रेगिस्तान माना है, परंतु विशाल गोबी का बहुत कम हिस्सा रेतीला रेगिस्तान है। इसका काफी हिस्सा चट्टान है। काल ने बताया कि कि वहां गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और शीतकाल में 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है, दादाजी ने कहा। काल ने गोबी रेगिस्तान को जब पहली बार देखा तो उसे कंकरीले मैदानों और चट्टानों की विशाल बंजर भूमि दिखी। गोबी में अनेक लोगों को रहते देख वह बहुत चकित हुआ था। रास्ते में काल खानाबदोश मंगोलियाई गडेरियों के कारवाओं से मिला। इन गडेरियों के लिए घोड़ों, ऊंट और याक पर सवार होकर रेगिस्तान पार कर के चीन जाना सामान्य बात थी। काल जिन गडेरियों से मिला वे सब बहुत ही मददगार और शिष्ट लोग थे। पेज 62। गडेरियों ने काल को दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग के बारे में बताया जो गोबी रेगिस्तान से निकलता था। इस मार्ग को सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते थे क्योंकि चीन में बने रेशम का खूब व्यापार होता था। काल ने उन दुर्लभ और असामान्य जानवरों का वर्णन किया जिन्हें उसने गोबी में देखा। सबसे बड़ा बैक्ट्रियन ऊंट था। काल ने प्रसिद्ध मंगोलियाई घोड़ा भी देखा जिसकी मदद से एक समय मंगोल लोगों ने विश्व के सबसे बेहतर योद्धाओं की ख्याति प्राप्त की थी। रास्ते में उसने जंगली गधों का काफिला और हिरन व चिंकारा भी देखे। वह यह सोचकर उदास हो गया कि वह विश्व का एकमात्र रेगिस्तानी भालू गोबी भालू नहीं देख सका। सोनम के दादाजी ने कहा, काल को तब यह पता नहीं था परंतु गोबी रेगिस्तान में कभी डायनासोर रहते थे। आजकल यह क्षेत्र डायनासोर के अवशेषों की खोज कर रहे हैं। पेज 63। वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। सोनम की आंखें चमक उठी। मेरी इच्छा है कि मैं वहां जा सकूं, उसने कहा। दादाजी ने मुस्कुरा के कहा, मुझे विश्वास है तुम एक दिन वहां जरूर जाओगी। अब बर्फीला रेगिस्तान, टुंड्रा प्रदेश, शीत कटिबंध में 66.5 डिग्री उसे 90 डिग्री ओ के बीच टुंड्रा क्षेत्र है जहां शीतोष्ण वन खत्म होते हैं। वहीं से टुंड्रा का वृक्षहीन क्षेत्र शुरू होता है। यह उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र से आर्कटिक क्षेत्र तक फैले हैं। यहां धरती पर जमी बर्फ की परत सिर्फ 2 महीने के ग्रीष्म काल में पिघलती है। इसके नीचे की परत हमेशा जमी रहती है। टुंड्रा में केवल काई जैसी कुछ वनस्पतियां उगती हैं। गर्मी और पानी की कमी के कारण वनस्पति की कमी है। टुंड्रा में पूरे साल रहने वाले अनेक पक्षी और जानवर ऋतुओं के अनुसार रंग बदलते हैं। शरद काल में वे बर्फ के समान सफेद हो जाते हैं। बसंत ऋतु में वे अपने ग्रीष्मकालीन रंग पे वापस आ जाते हैं। लोमड़ी, उल्लू और खरगोश ऐसे ही कुछ जानवर हैं। अब एंटार्कटिका का रेगिस्तान, एंटार्कटिका महाद्वीप वास्तव में बर्फ की चादरों से ढका एक विशाल तैरता हुआ रेगिस्तान है। यहाँ की बर्फ की चादरें कई किलोमीटर गहरी हैं। यहाँ पर कड़ाके की ठंड वाली सर्दी साल में 10 महीने तक रहती है। यहाँ बहुत कम वनस्पतियां उगती हैं। यद्यपि एंटार्कटिका लगभग पूरी तरह से साल भर बर्फ से ढका रहता है, फिर भी यहाँ कुछ ऐसे कठोर पौधे उगते हैं जैसे एंटार्कटिका हेयर ग्रास, जिससे फूल भी निकलते हैं। यहाँ पर काई जैसी कुछ वनस्पतियां उगती हैं जो महीनों तक बर्फ से ढंके रहने पर भी जीवित रहती हैं। एंटार्क्टिका में केवल पेंगुइन चिड़िया तट के किनारे जीवित रहने में समर्थ रहे हैं। इस महाद्वीप के पर्यावरण में मनुष्य ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि यह लोग नहीं रह सकते। पृथ्वी के पर्यावरण को बेहतर समझने के लिए भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिक यहां अध्ययन करने आते हैं। पेज 64। आर्कटिक मरुस्थल। आर्कटिक प्रदेश एंटार्कटिका से थोड़ा कम ठंडा है। यहाँ जमीन से चिपकते हुए करीब 1 मीटर के झाड़ घास के बीच में पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा ठंड, तेज हवाएं और पानी की कमी की वजह से ये पौधे बहुत धीरे उगते हैं। ध्रुवीय भालू जो बर्फ की तरह सफेद हैं, कैरिबू या रेनडियर के झुंड इस प्रदेश में रहते हैं। दोनों ध्रुवीय प्रदेशों में विश्व के समुद्री पक्षियों की सबसे अधिक संख्या के अलावा व्हेल, वॉलरस और सील की विशाल संख्या भी है। अभ्यास: इन सवालों का जवाब दो। नंबर 1, गोबी रेगिस्तान की विशेषताएं क्या हैं? 2, गोबी रेगिस्तान में कौन लोग रहते हैं? 3, गोबी रेगिस्तान में रहने वाले 3 जानवरों के नाम बताओ। और 4, एंटार्कटिक में रहने वाले जीवों के नाम बताओ। अब इनके कारण दो। पहला, टुंड्रा में वनस्पति की कमी, और दूसरा, पक्षी और पशुओं का ऋतुओं के अनुसार रंग बदलना। पेज 64, चैप्टर नंबर 8 यहां समाप्त हुआ।